हाँ, पूरी रात मैं लॉकअप में था। शाम ने आकर मेरी जमानत करवाई, तब मैं बाहर आ पाया, ज्ञान ने बताया। न्यारा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। तो आपने हमें क्यों नहीं बुलाया? आप डैड को फोन करके बता सकते थे, उसने धीरे लेकिन शिकायत भरे स्वर में कहा। ज्ञान ने गहरी सांस ली। वो इतने खुश थे और मामला थोड़ा बिगड़ा हुआ था, इतना आसान नहीं था। मैं खुद ही परेशान था, मुझे लगा आप लोगों को और परेशान न करूं तो बेहतर है। पुलिस स्टेशन से निकलकर मैं सीधे फ्लैट गया, वहां से सामान लिया और यहां आ गया। अब न्यारा को सचमुच अफसोस हो रहा था, उसने बिना पूरी बात जाने ही उसे गलत समझ लिया था। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? उसने चिंतित होकर पूछा। थोड़ी सी, कंधे पर, ज्ञान ने सहजता से कहा। जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो कंधा स्टेयरिंग से टकरा गया था। दिखाइए, न्यारा तुरंत उसके पास आ गई। ज्ञान ने शर्ट के ऊपर के दो बटन खोले और हल्का सा कपड़ा सरकाकर कंधा दिखाया। वहां नीले निशान साफ दिखाई दे रहे थे। न्यारा का दिल हल्का सा कांप गया। उसने बहुत धीरे से हाथ बढ़ाकर उस निशान को छुआ। दर्द होगा, उसकी आवाज अब पूरी तरह नरम हो चुकी थी। पहले था, ज्ञान मुस्कुराया, मगर एक खूबसूरत लड़की के हाथ लगने के बाद अब नहीं रहा। उसकी आंखों में शरारत साफ चमक रही थी। न्यारा को अचानक एहसास हुआ कि उसका हाथ अब भी उसके कंधे पर है और वो अनजाने में उसे सहला रही है। वो झेम गई और तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। ज्ञान ने हल्के से हंसते हुए कहा, ऐसे हाथ खींचने की जरूरत नहीं है, अब तो हक है तुम्हारा। वैसे भी उसकी बात अधूरी रह गई, मगर अर्थ पूरा था। अब जो न्यारा कुछ देर पहले तक गुस्से में थी, वही अब अंदर ही अंदर शर्मा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल रही थी, मगर इस बार वो खामोशी भारी नहीं बल्कि धड़कनों से भरी हुई थी। अभी तो उनके बीच बातें शुरू हुई थी और वो फिर जा रहा था। कमरे की हवा में अब सिर्फ एक सवाल तैर रहा था, क्या ये दूरी उन्हें और करीब लाएगी या फिर कुछ और उलझा देगी। आज सुबह रेहान ऑफिस जाते हुए सादिया से कह गया था कि शाम को बाहर डिनर पर चलेंगे। असल में उस पर रेहाना बेगम नाराज हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके बेटे और बहू के बीच कोई दूरी रहे। घर में शांति बनाए रखने के लिए ये जरूरी भी था। दोपहर के बाद शाम के वक्त रेहाना बेगम सादिया के पास आई। वो हॉल के सोफे पर आराम से बैठी अपना फोन देख रही थी। सादिया, उठो, जाकर देखो क्या पहनोगी, तुम्हें रेहान के साथ बाहर डिनर पर जाना है, रेहाना बेगम ने नरमी से कहा। क्या फर्क पड़ता है अम्मी, कुछ भी पहन लूंगी, सादिया ने बेरुखी से जवाब दिया। उसका मूड अभी भी खराब था। ऐसा नहीं कहते, रेहाना बेगम ने थोड़ा सख्त होकर कहा। रेहान के साथ बाहर जा रही हो, अच्छे से कपड़े पहनो, सैलून जाकर तैयार हुआ, तुम्हारा पति तुम्हें अच्छे से सजा सवरा देखना चाहता है। तभी नूर, जो थोड़ी देर पहले ही यूनिवर्सिटी से आई थी, फैजान उसे छोड़कर गया था, खुशी खुशी बोली, भाभी मैं आपका मेकअप कर दूं, मुझे मेकअप करना आता है, मैं अपनी सारी सहेलियों का मेकअप खुद किया करती हूं। नूर की आवाज में मासूम उत्साह था, मगर सादिया के अंदर का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ था। उसने तीखे स्वर में कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी जरूरत है और मैं कोई गांव की अनपढ़ गवार औरत हूं जिसे मेकअप करना नहीं आता। हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसी वक्त अरमान भी हॉल में आया था, उसने भी सादिया की बात सुन ली थी। नूर का चेहरा उतर गया। सॉरी भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था, नूर ने तुरंत कहा। मगर सादिया बिना कुछ बोले उठी और गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली गई। रेहाना बेगम उसके पीछे पीछे गई। ये क्या तरीका है तुम्हारा नूर से बात करने का, उन्होंने कमरे में पहुंचते ही कहा। अपना लहजा सुधारो सादिया, नहीं तो तुम खुद प्रॉब्लम में आ जाओगी। तुम्हें क्या करूं अम्मी, हर बात में वही सही क्यों होती है, सादिया का गुस्सा अब खुलकर बाहर आ रहा था। तुम किसी और पर गुस्सा निकालने की बजाय अपने रिश्ते पर ध्यान दो, रेहाना बेगम ने समझाया। अगर तुम नूर से ऐसे बात करोगी तो रेहान फिर तुम पर गुस्सा हो जाएगा। सादिया का दिमाग और खराब हो गया। आखिर ऐसा क्या है नूर में, वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है सबके लिए, मेरे लिए वो नाराज हो जाते हैं, मेरे लिए कभी नहीं। रेहाना बेगम ने गहरी सांस ली। देखो सादिया, नूर ने बहुत कुछ झेला है, रेहान ने उसकी जिम्मेदारी ली है, हमारे लिए वो बेटी जैसी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम हो, मगर तुम्हें खुद को संभालना होगा, अपने पति पर फोकस करो, उसे समझो। सादिया चुप हो गई, मगर उसकी आंखों में जलन साफ थी। जाओ तैयार हो जाओ, रेहाना बेगम ने आखिर में कहा। सादिया खराब मूड के साथ अलमारी खोलकर कपड़े देखने लगी। उसके हाथ कपड़े निकाल रहे थे, मगर दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, क्या सच में रेहान के दिल में उसके लिए जगह कम हो रही है। उधर हॉल में नूर चुपचाप बैठी थी। अरमान ने धीरे से कहा, दिल पर मत लो, भाभी का मूड खराब है। नूर ने हल्की मुस्कान दी, मगर उसकी आंखों की उदासी छुप नहीं पाई। शाम को सादिया रेहान के साथ डिनर पर चली गई थी। बाहर की हल्की रोशनी, रेस्टोरेंट का सुकून भरा माहौल और धीमा म्यूजिक, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। सादिया सचमुच खुश थी, उसे रेहान के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद था, वो उसका शौहर था और वो उसकी मोहब्बत में पूरी तरह गिरफ्तार थी। टेबल पर बैठे बैठे रेहान ने अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। ये तुम्हारे लिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सादिया ने हैरानी से बॉक्स खोला, अंदर एक बेहद खूबसूरत रिंग चमक रही थी। ये बहुत खूबसूरत है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और रिंग अपनी उंगली में पहन ली। उसकी आंखों में सच्ची खुशी थी।
आप मुझसे नाराज मत हुआ करें, ऐसे ही खुश रहा करें, वो धीरे से बोली। उसकी आवाज में शिकायत भी थी और मोहब्बत भी। बिल्कुल, रेहन ने नरमी से कहा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही रहूंगा, मगर तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। सादिया ने उसकी तरफ देखा। कैसा प्रॉमिस? तुम नूर के साथ अच्छे से रहोगी, उसका ख्याल रखोगी, रेहान ने सीधा कहा। बस यही एक वाक्य सादिया की मुस्कान को हल्का सा फीका कर गया। मगर जब वो आपके लिए गलत बोलती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, सादिया ने दबे स्वर में कहा। वो मासूम है, बचपन में कह जाती है, रेहान ने तुरंत उसकी तरफदारी की। सादिया ने धीरे से हाँ कह दिया, मगर उस हाँ में दिल नहीं था। रेहान उसे डिनर पर लाया था, मगर उसकी फिक्र नूर की थी। ये एहसास सादिया के दिल को चुभ गया। जो खुशी कुछ पल पहले रिंग देखकर उसके चेहरे पर आई थी, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। दोनों ने खाना ऑर्डर किया, बातें भी हुई, मौसम की, काम की, घर की, मगर असली बात कोई नहीं कर पाया। रेहान कहीं ना कहीं अभी भी सादिया से नाराज था, और सादिया के दिल इस बात से भारी था कि उसकी मोहब्बत के बीच नूर आ गई थी। चेहरों पर दोनों की मुस्कान थी, मगर वो मुस्कान सिर्फ दिखावे की थी। दिल के अंदर बहुत कुछ चल रहा था, जलन, शिकायत, मोहब्बत, डर और एक अनकही दूरी। रेस्टोरेंट की रोशनी में वे एक खुशहाल जोड़े जैसे दिख रहे थे, मगर सच्चाई ये थी कि दोनों के बीच एक पतली सी दरार पड़ चुकी थी, जो अगर अभी ना भरी गई तो गहरी भी हो सकती थी। रात का वक्त था, घर के लॉन में हल्की पीली रोशनी चल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर चांद आधा झुका हुआ था। नूर को बाहर बैठना बेहद पसंद था, इसीलिए वो अपनी किताब लेकर लॉन में आ गई थी। वो आराम से कुर्सी पर बैठी पढ़ रही थी, जैसे दुनिया से बेखबर हो। उसी वक्त अरमान अपनी साइड से बाहर निकला, उसकी नजर नूर पर पड़ी। वो कुछ पल वहीं खड़ा उसे देखता रहा, फिर धीमे कदमों से उसके पास आकर रुक गया। क्या कर रही हो? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। पढ़ रही हूँ, नूर ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया। अरमान भी वहीं सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? नूर ने किताब से नजर हटाए बिना पूछा। है, मगर अभी नहीं, अरमान ने कहा, फिर कुछ पल चुप रहा, जैसे कोई बात सोच रहा हो। एक बात पूछूं? नूर ने हल्का सा माथा सिकोड़ते हुए उसकी तरफ देखा। क्या?
आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं।